समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। सुप्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं फरहत नास और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेणु कटारिया। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार रेणु।
नमस्कार फरहत, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड डियर लिसनर्स, एज फरहत हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड इन आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वी विल शेयर द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 18th ऑफ मार्च। तो फरहत, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट।
जी बिल्कुल रेनू, भारत और न्यूजीलैंड ने अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी क्षेत्रों में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में कल दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत आरंभ करने और पेशेवरों तथा कुशल श्रमिकों का आवागमन सुविधाजनक बनाने की व्यवस्था पर बातचीत की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत में भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। श्री मोदी ने प्रेस वक्तव्य में कहा कि दोनों पक्षों ने रक्षा और सुरक्षा साझेदारी मजबूत करने तथा संस्थागत बनाने और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने न्यूजीलैंड में कुछ गैरकानूनी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में अपनी चिंताएं साझा की हैं।
In Maharashtra, tensions between two groups broke out last evening in the Mahal area of central Nagpur. Rumors about the alleged vandalism of religious symbols led to communal tensions between the two groups, resulting in stone pelting and the burning of vehicles by some anti-social mob. Cyber team searched CCTV footage and police also did the combing operation to arrest about 15 anti-social elements involved in violence clashes. Union Minister Nitin Gadkari and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis have appealed to the people not to believe in rumours and to maintain peace and harmony. However, the repercussions of this incident were also seen in other parts of Nagpur late at night, where antisocial mobs set parked vehicles ablaze and causing damage to houses. Nagpur Police Commissioner Dr. Ravindra Singhal has imposed Section 163 of the BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita, to prohibit gatherings in certain areas under the jurisdiction of Nagpur City Police. Guardian Minister of Nagpur Chandrasekhar Bavankule will visit the Mahal area at 10 this morning.
अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गवार्ड ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों के लगातार उत्पीड़न को लेकर अमेरिका बहुत चिंतित है। एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में उन्होंने बांग्लादेश में बिगड़ती स्थिति की आलोचना की और चरमपंथी ताकतों तथा इस्लामी आतंकवाद से निपटने में ट्रंप प्रशासन के दृढ़ संकल्प के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन वैश्विक स्तर पर इस्लामी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को हराने के लिए प्रतिबद्ध है।
Russia has confirmed that President Vladimir Putin and US President Donald Trump will hold talks today on ending the Ukraine conflict. Kremlin spokesman Dmitry Peskov stated that preparations are underway for talks between the two leaders. On Sunday, President Trump announced plans to hold discussion with his Russian counterpart as part of his efforts to end the war in Ukraine. He mentioned that land and power plants would be key topics in the conversation. And all banks, Farhat, will remain open for transactions on 31st of March this year, despite it being a public holiday to provide convenience to taxpayers. In a notification, Reserve Bank said that necessary arrangements have been made to conduct special clearing operations across the country to facilitate the accounting of government receipts and payments in the current financial year itself. Issuing separate instructions to banks, RBI has asked them to keep branches open for over-the-counter transactions on 31st March up to normal working hours.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश में शहडोल जिले के विचारपुर गांव की अपनी यात्रा को याद किया। उन्होंने विचारपुर गांव को मिनी ब्राजील बताया। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने गांव का जिक्र किए जाने से विचारपुर के खिलाड़ी और कोच बेहद खुश हैं। फुटबॉल कोच रईस अहमद ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर मिनी ब्राजील कहा है विचारपुर को कि यहाँ के खिलाड़ियों की तारीफ की है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका।
खिलाड़ी रेणु केवट और सीताराम का मानना है कि इससे खिलाड़ियों का उत्साह और बढ़ेगा।
मैं बहुत खुश हूँ कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी इतने छोटे गाँव को चर्चा में ले रहे हैं।
मेरा नाम सीताराम सहीस है और मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी समय समय में हमारे विचारपुर शहडोल का नाम लेते रहते हैं, हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमें अच्छा लगता है हमारे शहडोल जिले का नाम हो रहा है।
प्रधानमंत्री ने मन की बात के 103वें एपिसोड में भी विचारपुर का उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री ने बताया था कि इस गांव का हर परिवार 4 पीढ़ियों से फुटबॉल खेल रहा है। अब तक गांव से करीब 80 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल चुके हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
And moving on to the world of sports, Farhad, the International Olympic Committee's IOC has approved the inclusion of boxing in the 2028 Los Angeles Olympic Games. A report.
The decision follows the International Olympic Committee's granting of provisional recognition to World Boxing last month, effectively sidelining the International Boxing Association and transferring authority to the new governing body. IOC President Thomas Bach announced the proposal at a press briefing yesterday.
After the provisional recognition of World Boxing in February, we were in the position to take this decision, so that this recommendation, of course, has to go to the session. But I'm very confident that the session will approve it so that all the boxers of the world then have certainty that they can participate in Olympic Games in LA.
Moreover, the World Boxing President Boris van der Voorst also welcomed the decision. Moving to Kabaddi World Cup 2025, both the Indian men's and women's teams will be in action this evening in Wolverhampton, England. The women's team will lock horns with Wales from Group D, while the men's team will take on Scotland from Group B. The Kabaddi World Cup kicked off yesterday and Indian men's team began their campaign on a winning note, defeating Italy 64-22. With Sanjeev Jasrotia, चिराग झा, आकाशवाणी न्यूज, दिल्ली।
खेल खबरों के बाद अब रुक कर लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर और जानते हैं महानगरों की खबरें।
जी बिल्कुल, यस, आई विल बिगिन विद चेन्नई। फरहद, डॉक्टर वी नारायणन, चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्च्ड अ न्यू रिसर्च सेंटर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यस्टरडे। द श्री एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च विल सपोर्ट द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस इन एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजीज व्हाइल अट्रैक्टिंग ग्लोबल टैलेंट एंड रिसर्च फंडिंग। The initiative aims to position India as a leader in thermal sciences research for space applications. The state-of-the-art research facility will focus on critical advancements in spacecraft and launch vehicle thermal management, a key area for India's expanding space ambitions. Aur ek aur khabar Chennai se hi hai. The Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation has entered into agreements with 20 renowned national and international publishers, including Oxford University Press, Bloomsbury Publishing, and Penguin Books, to translate books over the next 5 years. The state government has allocated 10 crore rupees for the project in the budget. Aur ab aapke paas chalte hain.
जी रेनू, नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया उत्सव का आयोजन चल रहा है और इस उत्सव में कई रोमांचक खेल और फिटनेस चैलेंज शामिल हैं, जिनमें रस्सी कूदना, आर्म्स रेसलिंग, क्रिकेट बॉलिंग, पुशअप और स्क्वाड प्रतियोगिताएं भी हैं। इसके अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञ उपस्थित, आगंतुकों के लिए पोषण और मनोवैज्ञानिक परामर्श सहित निःशुल्क स्वास्थ्य मूल्यांकन की पेशकश कर रहे हैं। इस उत्सव का उद्घाटन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने रविवार को किया था। वहीं बात की जाए अगर दिल्ली विधानसभा की जुड़ी खबर से, तो दिल्ली विधानसभा आज से नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को संसदीय प्रक्रिया, आचार संहिता और सुशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी प्रदान करना है।
Moving on to Bengaluru, the Karnataka governor presented certificates to scouts and guides cadets in Bengaluru yesterday. He awarded Chaturth Charan, Hirak Pank and Raja Puraskar certificates to cubs, bulbuls, scouts, guides, rovers and rangers during a ceremony at Rajbhavan. Addressing the audience, the governor recognized the significant contributions of the scouts and guides to the society and the nation. Governor Thavarchand Gehlot noted that Karnataka has nurtured over 7.5 lakh volunteers in the last 100 years through the Scouts and Guides movement. He urged them to continue serving with great energy and responsibility, integrating the values of scouting and guiding into their lives to uphold the security, sovereignty, unity and integrity of the country.
और रेनु अब महाराष्ट्र की ओर रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटों पर 27 मार्च को होने वाले उपचुनाव के लिए सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में सहयोगी शिवसेना और एनसीपी ने एक एक उम्मीदवार की घोषणा की। शिवसेना ने नंदुरबार जिले के एक प्रमुख पार्टी कार्यकर्ता चंद्रकांत रघुवंशी को उम्मीदवार बनाया, जबकि एनसीपी ने संजय खोड़के को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों के लिए नागपुर के पूर्व मेयर और फडणवीस के करीबी सहयोगी संदीप जोशी, राज्य भाजपा महासचिव संजय केनेकर और पूर्व विधायक दादाराव केची की उम्मीदवारी की भी घोषणा की थी और उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन था। वहीं महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री पंकजा मुड़े ने घोषणा की है कि राज्य नदियों में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए जल्द ही एक टास्क फोर्स का गठन करेगा। कल राज्य विधान परिषद में बोलते हुए सुश्री मुंडे ने कहा कि टास्क फोर्स में पर्यावरण, शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभागों के बीच सहयोग शामिल होगा, जिससे प्रदूषण नियंत्रण उपायों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इन्होंने ये भी बताया कि महाराष्ट्र की 55 नदियां प्रदूषित पाई गई हैं, जिसका मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों से अनुपचारित सीवेज को जल निकायों में छोड़ा जाना है।
And talking about Hyderabad Metro, Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy launched the Rajiv Yuva Vikasam scheme on the assembly premises last evening. The scheme provides self-employment loans to youth from SC, ST, BC and minority communities, and online applications have already begun. It is expected to create self-employment opportunities for 5 lakh unemployed youth in the state. The government has allocated 6,000 crore rupees for the initiative. According to the government notification, eligible beneficiaries will receive financial assistance of up to 3 lakh rupees to establish self-employment ventures. The scrutiny of applications will begin next month and selected beneficiaries will receive concessional loan sanction documents on June 2nd, Telangana Formation Day. Under the scheme, loans up to 1 lakh rupees will receive an 80% subsidy, loans up to 2 lakh rupees will receive a 70% subsidy, and loans up to 3 lakh rupees will receive no subsidy. और फरहत आप बताइए कोलकाता में क्या चल रहा है?
जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल सरकार की अगर बात की जाए तो अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने के लिए वहां पे कई कदम उठाए जा रहे हैं। नगर पालिका और शहरी मामलों के विभाग के मंत्री फरहत हकीम ने कल विधानसभा में इसकी जानकारी दी। विधानसभा में इस बार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 13,381 करोड़ रूपये का बजट प्रस्ताव पेश किया गया है। और ये तो थी खबरें दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से जुड़ी समाचार।
जी
और अब महानगरों के मौसम का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में बारिश हो सकती है, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
एंड चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। The minimum temperature was 25 degrees Celsius and the maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is expected to have a mainly clear sky, becoming partly cloudy in the afternoon or evening. The minimum temperature was 23 degrees Celsius and the maximum will be around 35 degrees. And Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 21 degrees and a maximum of 38 degrees Celsius.
और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। आज है 18 मार्च 2025 और आज ही के दिन 1919 में रॉयल एक्ट पारित किया गया और इसने 1915 में पारित डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की जगह ली। इसके जरिए भारतीयों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को कुचलने का भी काम किया गया।
यस फरहत, बट बिफोर वी डेल्व इनटू द हिस्ट्री ऑफ द डे सेक्शन एज यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद इट, बट देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू डिस्कस अबाउट द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे व्हिच वी आर ऑब्जर्विंग टुडे। सो थोड़ी सी इसके ऊपर जानकारी हम दे देते हैं. एवरी ईयर ऑन 18th ऑफ मार्च इंडिया ऑब्जर्व्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे टू रिकॉग्नाइज द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स वाइटल कंट्रीब्यूशंस टू नेशनल डिफेंस. द डे सेलिब्रेट्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड इनोवेटिव स्पिरिट विद परेड्स एग्जीबिशंस एंड अवार्ड सेरेमनीज हेल्ड अक्रॉस वेरियस फैक्ट्रीज टू शोकेस द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन वेपनरी एंड प्रोडक्शन. इट ऑल्सो मार्क्स द फाउंडिंग ऑफ द कासीपुर फैक्ट्री द बर्थ प्लेस ऑफ इंडियाज ऑर्डिनेंस प्रोडक्शन. तो और बताइए आप कौन से ईयर में जाएंगे अब?
जी हाँ, हम बात करते हैं 1922 की. तो आज ही के दिन महात्मा गांधी को कारावास की सजा सुनाई गई. वहीं 1940 में इटली शासक मुसोलिनी हिटलर के बातचीत में युद्ध में प्रवेश के लिए सहमत हुए.
एंड ऑन दिस डे इन द ईयर 1944 नाजी जर्मनी ऑक्यूपाइड हंगरी. ऑन द सेम डे दैट इज द 18th ऑफ मार्च इन 1948 सोवियत कंसल्टेंट्स लेफ्ट युगोस्लाविया इन द फर्स्ट साइन ऑफ द टीटो स्टालिन स्प्लिट. द टीटो स्टालिन स्प्लिट और द Soviet Yugoslav split was the culmination of a conflict between the political leaderships of Yugoslavia and the Soviet Union under Joseph Broz Tito and Joseph Stalin in the years following World War II.
और सन 1972 में आज के दिन विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत की गई.
इन 1959 ऑन दिस डे यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर साइन द हवाई स्टेटहुड बिल. In 1995, Michael Jordan announced he is ending his 17-month NBA retirement. और अगर हम Michael Jordan की बात कर रहे हैं तो फरहत, he was Michael Jordan या जैसे कि हम उन्हें MJ के नाम से जानते हैं. MJ was integral in popularizing basketball and the NBA around the world in the 1980s and 1990s, becoming a global cultural icon. Or I am now going to talk about the year 2018, wherein Cristiano Ronaldo recorded his 50th career hat-trick in Real Madrid's 6-3 win over Girona.
और चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर और याद करते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों को. सबसे पहले हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक शशि कपूर को. वे ऐसे अभिनेताओं में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने अपने सदाबहार अभिनय से लगभग 4 दशक तक हिंदी सिने प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन किया. कोलकाता में जन्मे शशि कपूर का असली नाम था बलबीर राज कपूर. साल 1965 में शशि कपूर के सिने करियर का अहम साल साबित हुआ. इस साल उनकी जब जब फूल खिले प्रदर्शित हुई. बेहतरीन गीत संगीत और अभिनय से सजी इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने न सिर्फ अभिनेत्री नंदा को बल्कि गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया.
परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना. परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना.
And a recipient of several accolades including 4 National Film Awards and 2 Filmfare Awards. He also featured in a number of English language international films, particularly films produced by Merchant Ivory. And Farhad, the government of India honored him with the Padma Bhushan in 2011 and the Dada Saheb Phalke Award in 2014 for his contribution to Indian cinema.
Ji, aur 80 ke dashak mein Shashi Kapoor ne film nirman ke kshetra में भी कदम रखा और जुनून फिल्म बनाई. इसके बाद उन्होंने कलयुग, 36 चौरंगी लेन, विजेता उत्सव और रमन जैसी फिल्में बनाई. हालांकि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हो पाई, लेकिन इन फिल्मों को समीक्षकों ने काफी पसंद किया. शशि कपूर ने लगभग 200 फिल्मों में काम किया. तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की फिल्म आओ गले लग जा से ये खूबसूरत सा गीत.
तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई. जाने तू
Today we are remembering John Edmund Andrew Phillips, who was an American musician. He was the leader of the vocal group the Mamas and the Papas and remains frequently referred to as Papa John Phillips. In addition to writing the majority of the group's compositions, he also wrote San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair in 1967 for former journeyman bandmate Scott McKenzie, as well as the oft-covered Me and My Uncle, which was a favorite in the repertoire of the Grateful Dead. Phillips was one of the chief organizers of the 1967 Monterey Pop Festival. But here, Farhad, hum ek bahut hi beautiful foot-tapping song sunne wale hain called California Dreaming, sung by John, Andrew Phillips or Papa John. And today we're also remembering Terence Jett Harris, MBE, who was an English rock and roll musician. He was an original member of Cliff Richard's backing band The Shadows, serving as the bass guitarist for the group's inception until April 1962, after which he had success as a soloist and as a duo with that band's drummer Tony Meehan. Tracks from Diamonds onward were recorded with Harris using standard Fender Jaguar and Gretsch guitar, usually detuned to D instead of E. So let's listen into this song, Diamonds.
और अब आज ही के दिन हमें अलविदा कहा था हिंदी सिनेमा की जानी मानी गायिका राजकुमारी दुबे ने. उनका नाम भले ही नई पीढ़ी के लिए विस्मृत हो चुका है, लेकिन पुराने संगीत के चाहने वालों में उनका नाम आज भी उसी अदब के साथ लिया जाता है जैसे उनके कार्यकाल में लिया जाता था. उनकी आवाज में एक अनोखी मिठास थी जो भुलाई नहीं भूलती. वो अपने जमाने की अग्रणी और बेहद प्रतिभाशाली गायिका रही. उनके गाए गानों ने 20 से भी अधिक वर्षों तक श्रोताओं का दिल लुभाया. गायिका राजकुमारी दुबे ने बेशुमार अभिनेत्रियों को आवाज प्रदान की. उन्होंने अनगिनत संगीतकारों, गीतकारों और रंगमंच के कलाकारों को सफलताएं देने में अहम भूमिका निभाई.
आज कल की फिक्र है क्या, मजे से पी और मजे से खा.
And today is the birthday of Adam Noah Levine, who is an American musician who is the lead singer, guitarist and sole continuous member of the pop rock band Maroon 5. Levine began his musical career in 1994 with the band Cara's Flowers, for which he served as lead vocalist and lead guitarist. And as part of Maroon 5, Levine has received multiple accolades including 3 Grammy Awards. As a solo artist, Levine achieved concurrent commercial success with his guest appearance on Gym Class Heroes' 2011 single Stereo Hearts, which peaked within the top 5 of the Billboard Hot 100. But here we're going to listen to his song Lost Stars.
Tell us the reason we just wasted on the earth.
And today is also the birthday of Dana Elaine Owens, known professionally by her stage name Queen Latifah, who is an American rapper, singer and actress. She has received various accolades including a Grammy Award, a Primetime Emmy Award, a Golden Globe Award, 3 Screen Actors Guild Awards and 2 NAACP Image Awards in addition to a nomination for an Academy Award. In 2006, she became the first hip-hop artist to receive a star on the Hollywood Walk of Fame. Latifah received critical acclaim for her portrayal of blues singer Bessie Smith in the HBO film Bessie, which she co-produced, winning the Primetime Emmy Award for Outstanding Television Movie. So here, let's listen in to a beautiful song sung by Queen Latifah, Just Another Day. Also, another popular singer born today is Alisha Chennai, who is an Indian pop singer known for her indie pop albums as well as playback singing in Hindi cinema. She began her singing career with the album Jadoo in 1985, and by the 1990s, she had become known as the queen of indie pop. Her best-known songs were with producers Anu Malik and Bidu during the 1990s, and her best song was Made in India. Lekin hum yahan par ek dusra gana aapko sunwayenge. And अच्छा फरहत, मुझे लगता है आप कुछ बोलने वाले हैं, पर there is another beautiful actress that we are remembering and जिनका बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, and she is Ratna Pathak Shah, who is an Indian actress and director known for her work in Hindi theatre, television and films.
जी बिल्कुल, और रत्ना ने अपने करियर की शुरुआत की थी फिल्म मंदी से. रत्ना पाठक ने मिर्च मसाला, जाने तू या जाने ना, खूबसूरत जैसी फिल्मों में काम किया. वो एक मशहूर कॉमिक टीवी शो सारा भाई वर्सेज सारा भाई का भी हिस्सा रह चुके हैं.
Yes, she garnered widespread recognition and acclaim for her portrayal of Mara Sarabhai, a snobbish socialite in the cult sitcom Sarabhai vs. Sarabhai. और यहीं पर ही let's listen into this beautiful conversation where Maya Sarabhai is frustrated over middle class Monisha. और थोड़ा सा सुन लेते हैं उनके ये डायलॉग.
चलो मैं तुम सबको गुड बाय कहने आई थी, मैं जा रही हूँ.
मम्मी जी, जो हुआ उसे भूल जाइए ना.
मैंने कोशिश की है मोनिशा,
दिल मारिए.
कैन यू प्लीज टेक इट इजी.
और मैंने कोशिश की है.
जब तुम साहिल से शादी करके आई थी तब मैंने कोशिश की थी ना एडजस्ट करने की.
मम्मी जी,
क्यों तुमने विदाई के वक्त यूं करके फेंके हुए चावल जाकर के इकट्ठा नहीं किए थे?
और इसके साथ ही वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का. हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा. अगर आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.nic.in पर. और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा. बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपने सुनी होगी और सीखने को मिली होगी.
बिल्कुल. बट डियर लिसनर्स, स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, आवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ सुपर्ब डे.
और इसी खूबसूरत गीतों के साथ आपसे अनुमति लेते हैं. दीजिए इजाजत फरहत नाज और
रेनू कटारिया को. नमस्कार.